तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता।
ओम शांति। किसी राज्य में सुबह सुबह एक घोषणा हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, जिसके जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, वो एक काल्पनिक गठरी में बांध दे और मध्य रात्रि नगर के बाहर और सारे दिन भर ये आकाशवाणी कई बार हुई कि जिसके जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो वेदना है, जो संताप है, वो एक काल्पनिक गठरी में बांधे और मध्य रात्रि उस शहर के बाहर फेंक कर आ जाए। आकाशवाणी ने यह भी कहा कि फेंकने के बाद जिस किसी भी सुख की कल्पना की जा सकती है, वो सारे कल्पना के सुख अन्य किसी गठरी पर, काल्पनिक गठरी में बांध कर वापस ले आया। जो सुख मांगेगा, बांधेगा उस काल्पनिक गठरी में, उसे वो मिल जाएगा। सारे नगरवासी, सारे राज्य निवासी दिन भर सोचते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, मेरे कौन कौन से दुख है, कौन सी पीड़ा है, कौन सा अभाव है, वो सब कुछ मुझे गठरी में बांधना है और रात को मध्य रात्रि शहर के बाहर छोड़ना है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, परंतु उस गांव में एक बूढ़ा सा फकीर है, वो कहीं नहीं जा रहा। लोग उससे पूछते हैं, तुम भी चलो। वो कहता है, नहीं। सभी लोग पहुंचते हैं नगर के बाहर और सारे दुखों की थैलियां, पोटलियां, गठरियां बाहर फेंकाते हैं और फिर कल्पना में जो जो सुख है वो एक काल्पनिक गठरी में बांधते हैं और ले आते हैं। सुखों की लंबी फेहरिस्त है, संसार का कोई भी सुख बच न पाए, सारे सुख मुझे मिल जाए, धन का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, संपदा का, ऐश्वर्य का, पद का, सारे सुख, भौतिक सुख, और सारे नगरवासी जब शहर वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं अब वो नगर नगर नहीं रहा, वहां तो महल खड़े हैं, जिसने जो जो सुख की कल्पना की थी वो सब कुछ उसे मिल गया है। और जैसे ही बाहर नगर पहुंचते सब बहुत खुश हो जाते, जो जो मांगा था वो सब सब सबको मिल गया। परंतु जैसे जैसे अपने घरों में जाते हैं सब सब दुखी होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाजू वाले का महल थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो सुख मांगना तो हमने भूल ही गया हमसे, जो दूसरे ने मांग लिया और दूसरे को मिल भी गया, और थोड़े ही समय के बाद जिसको जो कुछ मिला वो सब कुछ होते हुए भी सभी फिर से दुखी हो गए। और वो फकीर ना तो उसने दुख की पोटली बांधी और ना ही किसी काल्पनिक सुख की, वो वैसा के वैसा। लोगों ने उससे पूछा, ना तो आपने कुछ मांगा, ना आप कुछ ले आए, ना आप कुछ छोड़ आए, फिर भी आप इतने खुश क्यों? वो कहता है, मेरी खुशी आंतरिक है, मेरी खुशी का आधार संसार नहीं, मेरी खुशी का आधार कोई व्यक्ति नहीं, मेरी खुशी का आधार कोई वैभव नहीं, मेरी खुशी का आधार कोई साम्राज्य नहीं, मेरी खुशी का आधार कोई साधन नहीं, कोई लौकिक सांसारिक ऐहिक इंद्रिय सुख नहीं, मेरा सुख आंतरिक है, मेरा सुख निजात्मा में स्थित है। संसार की कोई भी बात मेरे उस सुख को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा है। आंतरिक सुख की ये यात्रा राजयोग की यात्रा है, निज स्वरूप की यात्रा है, अंतश्चेतना में बड़ी बैठी वो सारी संपदा उसको प्राप्त कर लेने की यात्रा है। तो आज इस तपस्या बड़ी के आरंभ में सभी अपने आप को मानसिक रीति से तैयार करेंगे, ये भट्टी एक यात्रा समान है, जिस यात्रा में बहुत से हीरे मोती माणिक मिलेंगे, और वो कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे, अंदर से ही मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर ही स्थित है। सारा खजाना हमारे भीतर है, उस भीतरी खजाने को ढूंढना है। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो एक नवीनतम योग सिखाते हैं, जिसका नाम है राजयोग। और योग का एक सुहाना सलोना सफर है, जिससे हम आज की इस भट्टी की शुरुआत करेंगे। तो सभी एकाग्र हो के अलर्ट होके पहले बैठेंगे, जैसे जैसे कमेंट्री चलेगी अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करते जाएंगे। सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, गीत वो संगीत सुनते हुए संगीत के परे आवाज से परे स्वयं को ले जाना है। तो चले चेतना के अनंत सागर में चैतन्य की दिव्य बूंद मैं शरीर की और मन की सभी हलचल समाप्त, जैसे इस सभा में मैं अकेला बैठा हूं। मैं शांत हूं, जितना मन शांत उतना शक्तिशाली। मोचा तमासे चहोर दिव्य किरणें फैल रही है, सारा सभागृह संपूर्ण शांत। सारी देह शिथिल, संसार का सारा चिंतन, संसार की सभी बातें, यह आवाज की दुनिया से परे अवस्था, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप अव्यक्त हूं, मौन एक काल्पनिक पर्दा आंखों के सामने, मुझे दिखाई दे रहा है मैंने इस जीवन में जो यात्राएं तय की है वो सभी। लौकिक पढ़ाई की यात्रा, भगवान के खोज की यात्रा, अलौकिक जन्म की यात्रा, स्वयं समर्पित जीवन की यात्रा। योग की यात्रा। कैसी रही ये यात्रा है? कितना निर्विघ्न रहा? ब्रह्मचर्य की यात्रा कितना अखंड रहा? शरीर की बीमारियों की यात्रा कैसी अवस्था रही? अलौकिक संबंधों की यात्रा सेवा की यात्रा कितना निर्विघ्न रहा? पुरुषार्थ की यात्रा धारणाओं की यात्रा मर्यादा की यात्रा अंतर जगत को देख रहा बचपन से अब तक न मालूम कितनी यात्रा है पार की एक गहन सन्नाटा और अब मुझे योग की यात्रा में और अधिक अग्रसर होना है। इस नवीनतम यात्रा की मैं पुनः नवीन रीति से शुरुआत करता हूं। प्रभु प्रेम की यात्रा, ईश्वरीय प्रेम की यात्रा, प्रभु मिलन की यात्रा, जो आत्मा को उस आनंद से भर दे जो संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं, जो आत्मा को उस मौन से भर दे जो निशब्द है, निस्तब्द है, वह शब्द रहित संगीत, वह अनहदनाद हृदय की आहत पुकार, शब्द। योग का यह रूहानी सफर हर एक ने बहुत पहले आरंभ कर दिया है। जब से इस ज्ञान में आए, जब से पता चला कि वो ही भगवान है जिसको हम खोज रहे थे, और जब से इस ब्राह्मण परिवार से जुड़ गए, हर एक ने ये यात्रा आरंभ की है। योग है क्या? योग का ये सफर क्या है? योग की क्या गहराई है? और योग का मन पर क्या प्रभाव है? योग करने से ऐसा क्या हो जाता है कि आत्मा भरपूर हो जाती है, इतनी शक्ति उसमें आ जाती है? तो आज की इस भट्टी की शुरुआत में और योग के इस सफर में हम योग की 10 परिभाषा पर चर्चा करेंगे। ये परिभाषा किसी एक स्थान पर लिखी नहीं, 69 से जो अव्यक्त प्रवाह चला, 69 से जो अव्यक्त नदी बहना प्रारंभ हुई, उस अव्यक्त प्रवाह में असंख्य मुरलियां हैं, असंख्य अव्यक्त वाणियां हैं। उन सभी अव्यक्त वाणियों का संकलन कहो, चिंतन सार कहो, ये 10 परिभाषा है योग की। और परिभाषा सुनते सुनते ही उस परिभाषा का अनुभव करना है। वो केवल व्याख्या नहीं, वैसे योग अव्याख्य है, योग अवर्णनीय है, अकथनीय है। योग की व्याख्या नहीं की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है। और योग कोई व्यक्ति सिखा नहीं सकता, योग हर आत्मा अपने अनुभव से सीखती है। कोई कहे कि मुझे योग करना सिखा दो, उत्तर जो भी दिया जाएगा शायद गलत होगा, क्योंकि योग अर्थात योग अर्थात छोड़ना। तो योग की सबसे पहली विधि, सबसे पहली परिभाषा, फर्स्ट डेफिनेशन है योग अर्थात स्मृति। योग अर्थात स्मृति, स्मृति अर्थात याद, रिमेम्बरेंस अर्थात कोई मेमोरी, अर्थात जो विस्मृति हो गई थी उसे फिर याद करना, वो योग है। अर्थात आत्मा जो भूल गई थी, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं किधर से आई हूं, मैं किसकी हूं, कौन मेरा है, कौन अपना है और कौन पराया है। जब आत्मा ये महसूस कर ले कि सारे जगत में, सकल संसार में एक परमात्मा के अतिरिक्त तो मेरा कोई भी सगा नहीं, जब ये स्मृति आ जाए तब उसकी याद आती है। किसी ने हंसी की बात कही है कि मेरे सारे रिश्तेदार बस एक ही गांव में रहते हैं और उस गांव का नाम है मतलबपुर। क्या नाम है? मतलबपुर। सभी इसी पुर के बाशिंदे हैं। सुरेंद्र मुनि, सबकी हरीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार का सारा प्रेम, संसार के सारे लोग, संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित है। सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। स्वार्थ हित प्रेम करते हैं एक दूसरे से। एक प्रभु ही है, एक परमात्मा ही है कि जिसका प्रेम निस्वार्थ है, फिर भी उसको छोड़कर मनुष्य आत्माएं, यहां वहां भटकती रहती है। इसका प्रेम, उसका प्रेम, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, मित्रों का प्रेम, संबंधियों का प्रेम, सारा जीवन पर्यंत अपने स्वार्थ को प्रेम की संज्ञा देते रहता है, अपनी वासना को प्रेम कहता है। वो प्रेम तो था ही नहीं, प्रेम का तो उसे अनुभव ही नहीं है। प्रेम तो आकाश में उड़ता है, मोह आसक्ति वासना स्वार्थ जमीन में है। प्रेम के तो पंख है, आसक्ति वासना के पंख नहीं। प्रेम तो अशरीरी है, प्रेम को शरीर से कोई संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं शरीर से, वासना का संबंध शरीर से। योग की सबसे पहली परिभाषा है योग अर्थात स्मृति। जब ये स्मृति आ जाए, जब ये मेमोरी आ जाए, जब ये याद आ जाए कि मेरा केवल वही है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं, एक तू ही सहारा, एक तू ही बल, एक तू ही आधार, तू ही संबल। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, इन हिम वी लिव वी मूव एंड हैव अवर बीइंग। हम उसमें जीते हैं, हम उसमें चलते हैं और हमारा सारा अस्तित्व उससे है। नीदर डेथ नॉर लाइफ नॉर एंजल्स नॉर प्रिंसिपैलिटीज नॉर थिंग्स प्रेजेंट नॉर थिंग्स टू कम नॉर एनी पर्सन और एनी पर्सन टू कम शैल बी एबल टू सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। ना इस संसार का कोई व्यक्ति जो विद्यमान है, ना वो व्यक्ति जो आने वाला है, ना संसार की कोई बातें, ना कोई फरिश्ता, ना कोई वस्तु, ना कोई समृद्धि, ना कोई संपन्नता, ना कोई साम्राज्य हमें भगवान के प्यार से जुदा कर सकता है। वी लिव वी मूव वी हैव अवर बीइंग इन हिम। हम जीते हैं, हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, उसमें। तू ही सर्वे सर्वा है, तेरे अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। जब आत्मा को ये स्मृति आ जाए तब फिर ये शब्द कहना कि मैं योग लगा रहा हूं नहीं रहेगा। योग लगाने की चीज वस्तु नहीं है, योग किसी क्रिया का नाम नहीं है, योग होने का नाम है। योग मेडिटेशन डूइंग नहीं है, बीइंग है। जैसे एक माँ का संबंध कैसे जुड़ा है उसके बेटे से, क्या वो कहती है कि मैं अभी आधा घंटा बैठकर अपने बेटे को याद करती हूँ? क्या वो कहती है बेटा बीमार है, 5 बजे तक उसको देखा, मेरी ड्यूटी पूरी हुई, अब मैं घर जा रही हूँ? प्यार है, और जहां प्यार है वहां गिनती कैसी? माला जपता हुआ साधु नगर में प्रवेश करता है, देखता है एक ग्वालिन किसी युवक को पात्र में दूध दे रही है। वो दूध बेचने वाली ग्वालिन है और वो दूध खरीदने आया है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा, और वो ग्वालिन, वो मटका आड़ा किए हुए दूध उसके पात्र में डाल रही है। वो साधु पूछता है, अरे तुम क्या कर रही हो, गिन भी नहीं रही हो, कितना डाल रही हो दूध, डाले जा रही हो कब से? वो कहती है, जिससे प्रेम है उससे गिनती कैसी? साधु अपनी माला फेंक देता है, जिससे प्रेम है उससे गिनती किए जा रहे। योग अर्थात स्मृति, दूसरी परिभाषा, योग अर्थात संबंध। योग अर्थात संबंध।
ये परिभाषा किसी भी शास्त्र में आज तक किसी भी शास्त्रवादी ने किसी भी धर्म ने नहीं दी होगी,
जो भगवान ने आकर दी। योगा इज रिलेशनशिप।
भगवान से प्रेममय संबंध जब जुड़ जाता है तब वो एक व्यक्ति बन जाता है, वो दोस्त बन जाता है, वो साजन बन जाता है, वो सखा बन जाता है, वो पिता बन जाता है, माँ बन जाती है,
वो गुरु बन जाता है। अद्वैय तत्व समाहित चित्तम, वो अद्वैय तत्व है, चित्त में समा जाता है। प्रोज्वल भक्ति पटा वृत वृत्तम, संचय नाश राक्षस नाश महस्त्रम, मन के सारे संशयों का वो नाश कर देता है। तो योग अर्थात संबंध। क्या हमने बाबा से सारे संबंध जोड़े हैं? यदि हाँ तो क्या उन संबंधों का अनुभव किया है? कोई नहीं है, हम अकेले सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, क्या अनुभव होता है कि वो छत्र छाया के रूप में मेरे ऊपर है? कठिन परिस्थिति, अचानक विकराल परिस्थिति जीवन में आ गई, सभी कह रहे हो तुम्हारा दोष है, हमें पता है हम निर्दोष हैं। क्या उस घड़ी ये अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ है? जब तक वो मेरे साथ है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। भगवान भी विकराल रूप धारण करेगा जब 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 जिसे वो प्रेम करता है उस पर संकट आएगा, परंतु वो आत्मा प्रह्लाद जैसी हो निश्चय बुद्धि, जो निर्भय है। क्या मेरा प्रेम वैसा है?
ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, ना किसी योगी के हृदय में, तपस्वी और सन्यासी के हृदय में वो मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरा प्रेमी बहुत अनन्य भाव से मेरे प्रेम में विलीन है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। बाप जिन बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं, उत्तर बाबा ने ही दिया था। अभी जो मुरली चली थी शांतिवन में, उसके पहले जो मुरली चली थी उसमें, जो बच्चे जिन बच्चों ने बाप को अपने दिल तख्त पर बिठाया है, बाप उन्हें अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ही हू गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे नंबर पर रखता है, वो उसे किसी भी नंबर पर नहीं रखता। भगवान को अपने जीवन में किस स्थान पर रखना है? प्रथम, फर्स्ट। तो बाबा से हमने कैसा संबंध जोड़ा है, कितना संबंध जोड़ा है, कितना अनन्य संबंध जोड़ा है, कितनी उसमें आत्मीयता है। हमने अस्पताल में बहुत सी दादियों को देखा है, बहुत से वरिष्ठ भाई बहनों को देखा है, बीमारी की बेहोश हालत में भी बाबा 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 ये स्वर निकलते हैं। बेहोश है, उन्हें भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर अगर उस हालत में भी भगवान का नाम आ रहा है, अर्थात कैसा प्यार रहा होगा। अचेतन में भी जिसका नाम आता है उससे कितना प्यार होगा? नहीं तो व्यक्ति चाहे कितना भी भगवान भगवान करता रहे, अंत में नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कर आवा, अंत राम कही आवत नहीं। राम याद नहीं आता, कौन याद आता है? व्यक्ति, मित्र, संबंधी, पैसा। एक हंसी की बात है, एक व्यक्ति मर रहा है, उसके चार बेटे, उसकी बेटी, उसकी पत्नी बाजू में है, और पिता कह रहा है, बाबा झाझा। वो कहते ये क्या कह रहा है? शायद ये कह रहे हैं बक्सा। और उसमें शायद कुछ गड़ा हुआ है। पूछने की कोशिश करते परंतु पिता बेहोश है। वो कहते हैं शायद ये किसी बक्सा की चर्चा कर रहे हैं और किसी झाड़ की चर्चा कर रहे हैं। घर के इर्द गिर्द बहुत सारे झाड़ है, शायद किसी झाड़ के नीचे बक्सा गड़ा हुआ है, पूछो इनसे क्या है। और पर पिता तो बेहोश है, अंतिम सांसें गिन रहे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा बचने की कोई उम्मीद नहीं, पर हाँ मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है बहुत महंगा, अगर लगा दूं तो 5 मिनट और जिएंगे। वो कहते लगाओ, मरना निश्चित है, परंतु ये बाबा और झाझा क्या है? कौन सा झाड़? किस झाड़ के नीचे बक्सा छिपा हुआ है? अगर वो मिल जाए तो जीवन संवर जाए, पूछो इनसे, लगाओ इंजेक्शन। बाबा झाझा, बाबा झाझा। इंजेक्शन लगाया जाता है। पिताजी को होश आता है, कहते अरे मूर्खो, यहां क्या कह रहे कर रहे कर रहे हो? वो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। बछड़ा क्या कर रहा है? झाड़ू चबा रहा है। एक झाड़ू का नुकसान हो रहा है। इतना बोल के ही प्राण पखेरु उड़ गए। अंत में वही निकलता है जो जीवन भर सोचा था। जीवन भर धन के पीछे, पैसे के पीछे भागे थे। फिर ये नहीं कहना कि अभी मैं राम का नाम ले लूं और जाऊं जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख में हो नहीं होगा, गंगा जल नहीं होगा। जो सोचा है जीवन पर्यंत वही निकलेगा। यदि भगवान का सोचा है, यदि अंतमति गति चाहिए और उसका नाम हृदय में चाहिए, तो लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। लंबे समय का पुरुषार्थ तो ही होगा, नहीं तो नहीं। याद अर्थात संबंध। संबंध जुड़ गया फिर याद सहज है। संबंध जुड़ गया फिर प्रयत्न नहीं करने पड़ते, अपने आप याद आती है। बेटा कहीं दूर है, विदेश में पढ़ाई करता है, माँ यहां है, योग में बाबा के कमरे में बैठी हुई है, अचानक बेटे की याद आई और आंसू आ गए। भगवान की याद में नहीं, बेटे की याद में। क्यों? क्योंकि उससे संबंध ज्यादा गहरा है, इससे भगवान से इतना गहरा नहीं है। अभी तक संबंध जोड़ना है। एक माता थी, वो कहती थी भगवान को मैंने, शिव बाबा को अपना बड़ा भाई बनाया है। वो मेरा गुरु नहीं है, वो मेरा बाप नहीं है, वो साजन भी नहीं, मैंने उसे क्या बनाया है? बड़ा भाई। क्यों? क्योंकि जब से ज्ञान में आई तब से पवित्रता के लिए विघ्न थे पति की तरफ से। रोज झगड़ा, रोज जबरदस्ती, और भगवान ने मेरी हर बार मदद की। जब भी संकट आया मैंने पुकारा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और उसने मेरी हर समय रक्षा की, इसलिए मैंने उसे भाई बना के रखा। अगर एक भी संबंध की कमी होगी तो द्वापर युग से उसी संबंध के द्वारा मनुष्य द्वारा दुख प्राप्त होगा। अगर इस संबंध में इस जीवन में उसको पति नहीं बनाया तो द्वापर से पति के द्वारा दुख मिलेगा। अगर इस जीवन में उसे बेटा नहीं बनाया तो जरूर बेटे द्वारा कभी ना कभी दुख मिलेगा। हर संबंध उससे जोड़ देना तो योग अर्थात संबंध। तीसरा योग अर्थात मिलन, योग अर्थात जोड़, योग अर्थात भगवान से मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा मिल जाए। आत्मा की सबसे गहरी प्यास है मिलन की प्यास। इस तन से निकलकर आत्मा चली जाए उस परमात्मा के पास और मिल जाए, एक हो जाए, संयुक्त हो जाए, कंबाइंड रूप का अनुभव करो, बाबा ने कहा। और ये सारे कार्य अमृत वेले जितने होंगे, दिन भर थोड़े कम। इसलिए आज से यहां बैठे बैठे इसी भट्टी से संकल्प करेंगे कि आज के बाद एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं होगा, एक दिन भी नहीं। ब्रह्मा बाबा के 33 वर्ष का पुरुषार्थी जीवन था, उसमें एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। अगर रोज रोज अमृत वेला मिस हो रहा है तो कैसे भगवान से मिलन मनाएंगे, कैसे आत्मा की प्यास बुझेगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम तुम्हें आकर्षित न करे। अगर अमृत वेला ही छूट गया, मिस हो गया, साधारण था, नींद में बीत गया, तो सारे दिन भर भीख मांगते रहना पड़ेगा। जैसे बड़े शहरों में अगर कहीं केवल सुबह पानी आता है 4 से 5 और जो गृहिणी है वो सो गई, तो सारे दिन भर बकेट लेकर इसके उसके घर जाओ, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। अमृत वेले वरदानों का समय है, वो मिस हो गया, भीख मांगो, सुख दे दो, शांति दे दो, आनंद दे दो, इसको उसको मांगना पड़ेगा, उत्तर दे दो। ये जीवन में समस्या है, भगवान सभी उत्तरों का सागर है, सभी समाधान का वो सागर है, सारे उत्तर उसके पास हैं और वो मिलेंगे अमृत वेला। प्रातस्मरामिरिधि संस्फुरदात्म तत्त्वम् सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम् तद्ब्रह्म निष्कलमहम् न च भाति भूत संगम्। मैं ये भूत संग नहीं हूं, ये देह का आवरण मैं नहीं हूं, ये देह का कलेवर मैं नहीं हूं। प्रातस्मरामिरिधि संस्फुरदात्म तत्त्वम्, आत्मा का सुबह सुबह उठकर चिंतन, सच्चित् सुखम्, सच्चा सुख इस आत्मा के चिंतन में है। आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं संसार में। नच भाति भूत संगम, ये मैं भूत पंच तत्वों का देह नहीं, मैं वो हूं। तद ब्रह्म निष्कलमः, निष्कलंक मैं वो आत्मा हूं। यहां बैठे बैठे मन ही में प्रतिज्ञा करनी कि कल से एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। हाथ खड़ा करने के भी मार्ग है मिलन, भगवान से मिलन हो जाए, कितनी खुशी होगी, कितना आनंद है उसमें। यदि इस नरसिंहपुर में एक व्यक्ति आ जाए और वो कहे मैं हिमालय से आया हूं 25 साल तपस्या करने के बाद और मुझे अभी अभी भगवान के साक्षात्कार हुए हैं, और जन समुदाय के बीच खड़ा होकर कहे कि मैं भगवान का दर्शन करके आया हूं, तो लोग क्या करेंगे? उसको उसी की पूजा चालू कर देंगे, उसी को भगवान समझ लेंगे। सुबह सुबह अनुभव हो जाए कि मैं अभी अभी भगवान से मिलन मना कर आ रहा हूं, एक डबल विदेशी माता माउंट आबू आने के लिए फ्लाइट की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वहां के जो अफसर थे उससे पूछते, आप लोग क्या करते हो? उस माता ने नशे से कहा, हम भगवान की मदद करते हैं। लोग क्या करते हैं? भगवान से मदद मांगते हैं। उसने कहा, हम भगवान की मदद करते हैं, वी हेल्प गॉड। कितना आश्चर्यकारक उत्तर है। चौथा योग अर्थात लगन में मगन। योग अर्थात लगन में मगन। आत्मा लगन में मगन हो जाए, धुन 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 लग जाए उसको, और कुछ सोचता ही नहीं है, बस धुन लग गई है, एक प्रभु की धुन, एक परमात्मा की धुन लग गई है, मगन हो गई है चेतना, और कुछ अच्छा नहीं लगता उसको, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता। मारारी गिरधर गोपाल, न जनम न जनम न सुंदरी कामय, मम जन्मनी जन्मनेश्वरे भगवत भक्ति रहे दुखी त्वयि। न मुझे धन चाहिए, न स्त्री चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, न संपदा चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, हे प्रभु निरंतर बस तुझ में मन लगा रहे, इतना वरदान दे दे। जहां तू है वहां सब कुछ है, जहां तू नहीं वहां कुछ भी नहीं। योग अर्थात लगन में मगन। पांचवी परिभाषा, योग अर्थात याद की यात्रा। योग एक यात्रा का नाम है, यह परिभाषा तो आज तक किसी ने नहीं दी। एक यात्रा है अंतर जगत की यात्रा, यात्रा है सूक्ष्म वतन की यात्रा, यात्रा है परम धाम की यात्रा, यात्रा है योग। और ये यात्रा रोज करनी है, एक दिन कर लिया आज अच्छा, योग कर लिया पूरा हो गया, नहीं, जीवन पर्यंत यात्रा चलेगी। और इस यात्रा में असंख्य अनुभव है, ये नहीं समझ लेना कि ये यात्रा अंतिम है, ये यात्रा हो गई। हर दिन नए नए अनुभव। और ये भी नहीं समझ लेना कि ये जो मील, ये जो अनुभव हुआ ये अंतिम है, ये केवल मील का पत्थर है, गंतव्य बहुत आगे है। थोड़ा सा अनुभव हो गया, बाबा के प्यार में आंसू आ गए, आत्मा अशरीरीपन का अनुभव कर लिए, और समझ लेना कि बहुत मैंने पा लिया, ये भी बाधा है। किसी सूफी संत से किसी ने पूछा, अध्यात्म क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअलिटी इज एंड मोर एंड मोर एंड मोर, और आगे और आगे और आगे और आगे, ये अध्यात्म की परिभाषा है। जहां मैं हूं, बहुत सेवाएं कर ली, बहुत बाबा से अनुभव कर लिया, बहुत मधुबन में बाबा से मिलन मना लिए, बहुत मुरलियां पढ़ ली पढ़ा ली, बहुत सुबह 2 बजे वाला योग कर लिया, कुछ भी नहीं किया। ये समझना आज से चालू करना है, ये समझना अब से चालू करना है, और आगे और आगे और आगे रुक नहीं जाना, बहुत सारे खजाने और बाकी है, अभी तो हमने कुछ भी अनुभव नहीं किया है। योग की गहरी गहरी अवस्था है तो अभी भी हमसे कितनी दूर है, और आगे और आगे और आगे। तो योग की पांचवी परिभाषा है याद की यात्रा। योग की छठवी परिभाषा है योग अर्थात अटेंशन। योग अर्थात अटेंशन, जागरूकता। जब हम जागे हुए हैं तो कभी नहीं गिरते। यदि ये रास्ता है और यहां पर एक गड्ढा है और कोई व्यक्ति यहां से चल रहा हो, क्या उसमें गिरेगा? गिरेगा तब अगर बेहोश है, गिरेगा तब अगर होश में नहीं है। जो संपूर्ण होश में है वो कभी भी जानबूझकर कभी किसी गड्ढे में नहीं गिरता। अर्थात जब जब मैं गिरा हूं, जब जब मैं गड्ढे में गिरा हूं, तब मैं बेहोशी में था, और देहभान अर्थात बेहोशी और आत्माभिमान अर्थात जागृति। जीवन में अगर हम अपने जीवन में देखें कौन कौन सी गलतियां हुई, और वो क्यों हुई, हम पाएंगे कि वो गलतियां रूहानी बेहोशी की हालत में हुई थी। उस समय ना बाबा याद था, उस समय आत्म अभिमानी स्थिति नहीं थी, उस समय ना यज्ञ याद था, उस समय ना मर्यादाएं याद थी, कुछ भी नहीं था, सब विस्मृत हो गया था, तब गलतियां हुई। अगर जागृत होते तो शायद ये गलती ना होती। यदि हम आपसे कहे दो दिन के बाद, या हम नहीं, चलो कोई ज्योतिषी कह दे, हाथ देख ले और कहे दो दिन के बाद तुम्हारे जीवन में आज तक जो कभी ना आया ऐसा संकट आने वाला, एक ऐसी समस्या आने वाली है घर पर, परिवार पर, जो आज तक कभी नहीं आई थी, जो तुमने सोची भी नहीं, अकल्पनीय समस्या, एक पहाड़ टूटने वाला है तुम पर दो दिन के बाद। पर वो ज्योतिषी ये भी कहते कि हाँ, पर इसमें ये भी दिखाई दे रहा है, तुम्हारा जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास है, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, यदि तुम उसकी याद में रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो दो दिन क्या करेंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे? दो दिन भोग विलास ऐश आराम क्या करेंगे दो दिन? घंटी बज गई है जागरण की, एक ऐसा संकट जो सोचा ही नहीं था, वो संकट कुछ भी हो सकता है, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की ऐसी बीमारी लाइलाज, स्वयं की ऐसी बीमारी लाइलाज, खुद की ही मृत्यु। मृत्यु और बीमारी तो छोटी बात है, इससे भी बड़े बड़े संकट है संसार में। कोई वास्तव में ही कह दे ये ऐसा संकट है दो दिन के बाद, क्या करेंगे आप बताओ? दो दिन क्या करेंगे? माताएं क्या करेगी दो दिन? घर छोड़कर सेंटर पर तो नहीं आ जाएगी अखंड योग करने? हम तो किसी का नहीं सुनेंगे अब, हमको तो बस बाबा के कमरे में बैठना है। क्या करेगी भाई, क्या करेंगे? ऐसा संकट आने वाला है दो दिन के बाद, एक पल भी बेहोशी का ना हो ऐसा ध्यान रखेंगे, एक भी गलती ना हो। योग अर्थात छठवीं परिभाषा, अटेंशन, सावधान। भगवान वॉचमैन पहरेदार, कलयुग की अंधेरी रात में आया है, जागते रहो। जाग मचिंदर गोरख आया, गोरखनाथ आया मचिंदर से कह रहा है जाग मचिंदर गोरख आया। सातवीं परिभाषा, योग अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात योग नहीं, एकाग्र होने वाले तो संसार में बहुत है, कॉन्सेंट्रेशन करने वाले त्राटक योग करते हैं, क्या वो योगी हुए? ना। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, एक बार किताब पढ़ते हैं पूरी याद, एक बार सभा में सबके नाम पूछते हैं और तुरंत सबके नाम बताते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा वो बोर्ड पर लिखते हैं, आगे से पीछे और पीछे से आगे सब बताते हैं। उनकी एकाग्रता जबरदस्त है, परंतु एकाग्रता है अर्थात वो योगी हुए नहीं। हाँ, पर जो योगी है और योग की जो परिभाषा है, उस योग की परिभाषा में एक परिभाषा यह है कि योग जब हो तब मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, मन का भटकना बंद, और वो तब होगा जब इंटरेस्ट होगा। छोटा सा बच्चा, उसको किताब दो मैथ्स की, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने, पर टीवी जब देखता है, कार्टून शो जब देखता है, छोटा बच्चा बैठा है टीवी में कार्टून शो देख रहा है, बीच में आके खड़े हो जाओ, क्या करता है, इधर से देखेगा, हटो, डिस्टर्ब मत करो, कितनी एकाग्रता है उसकी, एक एक सीन भी मिस नहीं करना चाहता। क्यों? इंटरेस्ट, एकाग्रता वहां है जहां इंटरेस्ट है, जहां इंटरेस्ट ही नहीं है वहां एकाग्रता कैसी होगी। मुरली पढ़ो, पढ़ते हैं बुद्धि भटकती है, इंटरेस्ट कहां है, उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए, ऊपर ऊपर का है। सेवा केंद्र पर गए, सेंटर पर गए, डायरी खोली, ओम शांति, मीठे बच्चे, लिखा प्रश्न, लिखा उत्तर, लिखा डायरी बंद बाजू में, और फिर डोलना चालू, और बीच बीच में झपकी थोड़ी बहुत, और फिर मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, जैसे बोला एकदम जागृति, फर्क थे डायरी ली, और एक बार देखा, किसी ने देखा तो नहीं, धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो वरदान, स्लोगन, डायरी बंद, आज का काम पूरा हुआ, कल मिलेंगे। बाहर जाते जाते और चप्पल पहनते पहनते महावाक्य उड़ गया, घर पहुंचते पहुंचते प्रश्न उत्तर उड़ गया, नाश्ता बनाते बनाते धारणा के लिए मुख्य सार रफू चक्कर, नाश्ता खाते खाते वरदान गया, घर गृहस्थ के काम करते करते और ऑफिस जाते जाते स्लोगन गया, शाम तक पूरी मुरली गई, और कोई शाम को पूछता है आज की मुरली सुनी क्या, इतनी अच्छी थी क्या बताऊं, क्या थी वो मत पूछना, बस क्या थी, अच्छी थी बस, बहन जी ने ऐसा सुनाया, पहले तो आते नहीं और फिर पूछते हो कि मुरली में क्या था, पर क्या था वो तो बताओ, वो मत पूछो, बस जो था वो बहुत अच्छा था। सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मुरली लिखना और आ जाना, ये है पुरानी चाल। अब उसका चिंतन करना है, अब उसका मनन करना है, अब उसका अध्ययन करना है, उसकी गहराई में जाना है, उसमें डूबना है। मैं पहला खोजा नहीं अगमभव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूँ, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं गोताखोर हूं, बहुत गहरे जाना है, तट पर बैठकर भंवर की बातें नहीं करूंगा, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। योग अर्थात एकाग्रता, एकाग्र हो जाए। दत्तात्रेय के 24 गुरु बताए, उसमें से एक गुरु है शिकारी, तट पर बैठा हुआ है शिकारी, मछुआरा, शिकारी भी है मछुआरा, वो मछुआरे ने अपना जाल डाला है, दत्तात्रेय वहां से गुजर रहे, कहते हैं फला फला मार्ग कहा है, उसका ध्यान ही नहीं, वो अपनी मछली पकड़ने में, फिर से पूछते हैं ये मार्ग कहाँ है, कोई उत्तर नहीं, फिर से पूछते हैं ये मार्ग कहाँ है, कोई उत्तर नहीं, और जैसे ही वो मछली को पकड़ता है, बाहर निकालता है, फिर कहता है आपने कुछ पूछा, क्यों, इतनी दत्त चित्त रैप्ड अटेंशन, इतनी एकाग्रता की पता ही नहीं क्या पूछा गया। हमारा योग बैठे, जैसे ही मोबाइल बजा, कौन है वो, देखेंगे इसको बाद में, इतना कच्चा योग,
योग की आठवीं परिभाषा,
योग अर्थात समर्पण, सरेंडर।
योग अर्थात समर्पण।
किसी अमृत वेला ये दसों परिभाषा याद करना और इसी पर योग करना, कितनी शक्तिशाली अमृत वेला होता है फिर देखने। बाबा मैं समर्पित करती हूँ अपने आप को, बाबा मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पण करता हूँ। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, अब तू जैसा कहे, धाई विल शाल बिडन, तू जो कहे, तू जहां बिठाए, सब कुछ तेरा होई सोई जो राम रचि राखा।
समर्पण,
अपनी समस्याओं का समर्पण करता हूं, अपने अवगुणों का समर्पण करता हूं, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। ये समस्या मुझे खाए जा रही है, इस समस्या को मैं आज तेरे सामने रख देता हूं,
तू संभाल, तू देख ले, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा।
एक बहुत ही भोला सा राम का भगत था,
कपड़े बेचता था,
गिराई का आते थे, पूछते थे इसका दाम क्या है, वो कहता था राम की इच्छा से,
ये कपड़ा मैंने 5 रुपए में खरीदा राम की इच्छा से।
इस कपड़े को सजाया सवारा
राम की इच्छा से, अब इस कपड़े का दाम 7 रुपए।
एक दिन कार्य पूरा करके, भोजन करके बरामदे में बैठा है, डाकुओं की एक टोली आती है, देखते हैं बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, इसको पकड़ के ले जाते हैं, जो खजाना हम लूटेंगे इसके कंधे पर, इसकी पीठ पर ला देंगे, उसको पकड़ कर ले जाता है। राजमहल में डाकू प्रवेश करते हैं, वो 3-4 सेंध लगाते हैं, अंदर जाते हैं, खजाना लूटते हैं, बोरियों में भरते हैं, बाहर लाते हैं और इस भोले वाले भक्त के पीठ पर रखते हैं। उतने में सिपाही आ जाते हैं,
चोर डाकू भाग जाते हैं, इस भोले वाले व्यक्ति को पकड़ लेते, कारागार में डाल देते।
दूसरे दिन राजा के सामने उपस्थित होते हैं, करा जाता है उसको, कहते हैं कहो तुम्हें कुछ कहना है,
वो कहता है राम की इच्छा से
मैंने अपने दुकान का कार्य पूरा किया, फिर राम की इच्छा से मैं घर आया, फिर राम की इच्छा से मैं घर के बाहर बैठा था, और राम ही की इच्छा से फिर डाकू वहां, और राम की इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और राम की इच्छा से वो मुझे लेकर गए, और राम ही की इच्छा से उन्होंने खजाना लूटा, और राम ही की इच्छा से बोरियों में भरा, और राम की इच्छा से मेरे पीठ पर रखा, और राम की इच्छा से आपके सिपाही वहां आ गए, और राम की इच्छा से जैसे ही सिपाही आ गए, राम जी की इच्छा थी कि वो वहां से भाग गए, और राम जी की इच्छा से मुझे उन्होंने पकड़ लिया, और राम जी की इच्छा से आपके कारागार में रात भर रहा, और हे महाराज, हे हुजूर, राम जी की इच्छा से ही मैं अभी आपके सम्मुख खड़ा हूं, कोई कंप्लेंट ही नहीं है,
कैसा समर्पण है। राजा भी सोचता है ऐसा व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है,
और उस व्यक्ति के गांव के लोग भी आए हैं उस सभा में देखने के लिए क्या होता है। राजा कहते हैं ये चोर नहीं है, इसको छोड़ दो। वो व्यक्ति वापस जा रहा है, लौट रहा है अपने गांव अपने साथियों के साथ, उनको कहता है राम जी की इच्छा से
राजा ने मुझे छोड़ दिया। इसमें राजा का डाकुओं का तो कोई रोल ही नहीं है, कहीं
जो कुछ हो रहा है वो राम जी की इच्छा से हो रहा है,
होई सोई जो राम रचि राखा।
जीसस क्राइस्ट कहता है थाई विल शाल बी डन, तेरी इच्छा है प्रभु मेरी नहीं, मैं नहीं तू,
ऐसा समर्पण।
योग अर्थात समर्पण, जहां तूने रखा ये स्थान सबसे बेस्ट है, जिन लोगों के बीच मैं हूं ये संसार के बेस्ट लोग हैं, सर्वोत्तम लोग हैं, जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, यह परिस्थिति संसार की सबसे अच्छी परिस्थिति। भगवान के महावाक्य है इन्वर्टेड कॉमा, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। क्योंकि यह स्थान ही तुम्हारे लिए उपयुक्त है, तुम्हारे लिए ही चुना गया था इस स्थान को, यही लोगों के बीच तुम्हें रहना है, इन्हीं बड़ों के बीच, इन्हीं साथियों के बीच, इन्हीं छोटों के बीच। नौवा योग अर्थात आत्माभिमान और परमात्माभिमान। योग अर्थात आत्माभिमानी स्थिति और परमात्माभिमानी स्थिति। आत्मा समझना अर्थात ही योग, क्योंकि जैसे देह समझा जाता है देह की सारी बातें याद आती है, उसी तरह जैसे आत्मा समझा जाता है अपने आप, आत्मा का पिता कौन, आत्मा का घर कौन, आत्मा को जाना कहाँ है, आत्मा की प्यास क्या, आत्मा का निज स्वरूप, निज धाम, निज घर, निज धर्म, सब याद आने लगता है। तो योग अर्थात आत्माभिमान और परमात्माभिमान। और योग की 10वीं परिभाषा एनर्जी ट्रांसफरेंस। योग अर्थात शक्ति का आदान प्रदान। जो परमात्मा में शक्ति है वो सारी शक्तियां मुझ में आ गई, ये है योग। ट्रांसफर हो गई उधर से इधर शक्तियां, ये है योग। भक्ति मार्ग में 3 प्रकार की दीक्षा का वर्णन है। एक है मंत्र दीक्षा, एक है नयन दीक्षा, एक है स्पर्श दीक्षा। गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, मंत्र दीक्षा। दूसरा नयन दीक्षा, उसे मंत्र नहीं देता, केवल दृष्टि देता है और दृष्टि से अपनी सारी शक्तियां उस शिष्य में ट्रांसफर कर देता है। हमें याद है जब हम सेकेंड MBBS में थे, इस ज्ञान में नहीं थे, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में सिद्ध योगी योगी एक टोली आई थी, सिद्ध योगा स्वामी मुकुंदानंद। तो ऐसे एक हॉल में उनके वो बैठे थे और वो लोग दृष्टिपात करते थे, दृष्टि से अपनी शक्तियां दूसरों को देना, उसे कहते हैं दृष्टिपात, सिद्ध योग। तो वो सभा पूरी हुई और हम भी उसमें बैठे और सब जाने लगे, हम भी जाने लगे। वो जो गुरु थे उन्होंने हमको बुलाया, हम छोटे थे बहुत, 20 वर्ष से भी कम। तो उन्होंने सामने बिठाया, हमने कहा क्या, उन्होंने कहा सामने बैठो और दृष्टि देते रहे। हमने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा शक्तिपात। हमने कहा क्यों, उन्होंने कहा तुम्हारे काम आएगी भविष्य में। तो संसार में ऐसे बहुत योगी है तपस्वी जिनके पास सिद्धि आया है। शक्ति ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर। उन्होंने हमसे कहा था एक हफ्ता तक एक विशेष शक्ति तुम्हारे साथ चलेगी, तुम जिसे हाथ लगाओगे वो ठीक होगा। पर वो फर्स्ट ईयर अभी पूरा ही हुआ था, उसमें रैगिंग का डर होता है कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज में जाना और निकल के वापस आना इतना ही काम था। हॉस्पिटल जो उसी कैंपस में था उसमें हम जाते नहीं थे, परंतु उसने हमको कहा था उस गुरु ने कि तुम ऐसा करो, तो हम चुपके से गए थे। और एक पेशेंट था, उसको कुछ तो बीमारी थी पता नहीं क्या, पर उसको ऐसे हाथ लगाया और कहा कि इसकी जो भी बीमारी होगी ठीक होगी, और निकल के आ गए थे चुपचाप, कोई सीनियर देख ना ले।
और फिर वापस जाके देखा था तो वास्तव में जो हमने कहा था कि वो बचने वाला नहीं है, सुना था सिस्टर स्टाफ डॉक्टर से, वो ठीक हुआ था। तो वो जो योगी था, बहुत तपस्वी था वो, जो हमको जानता भी नहीं था, हम उसे जानते भी नहीं थे, फिर भी उस सभा से उसने हमको रोक कर ये कहा था कि भविष्य में तुम जो करोगे उसमें ये काम आएगा। हमने ब्रह्मा कुमारी सुना भी नहीं था कुछ खास। योग की 10वीं परिभाषा है एनर्जी ट्रांसफरेंस, एनर्जी ले लेना। पहली दीक्षा मंत्र, दूसरी दीक्षा नयन, तीसरी दीक्षा स्पर्श दीक्षा। हाथ लगाते हैं और एनर्जी ट्रांसफर। तो योग की ऐसी 10 परिभाषा है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला योग अर्थात स्मृति, दूसरा योग अर्थात संबंध, तीसरा योग अर्थात मिलन, चौथा योग अर्थात लगन में मगन, पांचवा योग अर्थात यात्रा, याद की यात्रा, छठवा योग अर्थात अटेंशन। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, कोई ऐसा एक शब्द लिख दो जो जीवन भर काम आए, जो अध्यात्म का सार है। वो लिखते हैं अटेंशन। वो कहता है, ये मुझे पता है, कुछ और लिखो। वो लिखते हैं अटेंशन। वो कहते मुझे पता है, दो बार अटेंशन, कुछ और मुझे ऐसा बताओ। गुरु लिखते हैं अटेंशन तीसरा। वो कहता है, मुझे पता है, कुछ ऐसा बता दो कि बस जीवन जिससे आध्यात्मिक हो जाए। गुरु लिखता है, ठीक है, अटेंशन। एक ही शब्द है, जागरण, जागृति, उत्तिष्ट, जागृत, प्राप्त, वरानुबोधत। योग अर्थात अटेंशन। अगला एकाग्रता, योग अर्थात दत्त चित्त हो जाए। बाबा की याद में हम देखते हैं मधुबन में कितने भाई बहने माताएं सुबह सुबह बाबा के कमरे में, कुटिया में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई बुद्ध। कितनी माताओं को हमने देखा बाबा के सामने बैठी है और आंखों से आंसू बह रहे। अगला योग अर्थात समर्पण, सब कुछ तेरा। दसवा योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस, शक्ति का आदान प्रदान, शक्ति का, शक्ति को अपने अंदर धारण कर लेना। तो योग की ऐसी 10 परिभाषा है। ओम शांति।
पस्याही जीवन की है सच्ची सुंदरता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, 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 तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।